नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। स्पेलेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया के साथ भारत ने इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। भारत ने इसराइल हमास युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते का स्वागत किया। कहा, समझौते से गाजा में मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति संभव होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत ने एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के खिलाड़ी पुरुष डबल्स प्रतियोगिता के दूसरे दौर पर पहुंच गए। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आगे के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन करने से सफिशियंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन।
आज भारत स्टार्टअप इंडिया की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इस परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार की नीतियों ने कारोबारी सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है, संशोधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की सफलता दर्शाती है कि आज के देश गतिशील, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेलेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस उपलब्धि की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रह की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली है। ये प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। संवाददाताओं से बातचीत में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने कहा है कि डॉकिंग प्रक्रिया चंद्रयान 4 मिशन में काफी मददगार साबित होगी। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला चौथा देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शणमुगरत्नम का आधिकारिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शणमुगरत्नम ने कहा है कि भारत और सिंगापुर डिजिटल क्षेत्र और सतत विकास में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। श्री शणमुगरत्नम ने कहा है कि पिछले वर्ष सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान घोषित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ सिंगापुर भारत के साथ अपनी संभावनाओं की खोज कर रहा है। दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी, सेमीकंडक्टर में सहयोग, विनिर्माण और औद्योगिकी पार्कों और नए उद्योगों में कौशल उन्नयन की खोज जैसी नई पहलों की संभावना का पता लगा रहे हैं। राष्ट्रपति थर्मन ने कहा है कि व्यवसाय, रक्षा और कौशल में दोनों देशों के संबंध कई वर्षों से सक्रिय है। उन्होंने बताया कि भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। तब से दोनों देशों के बीच एक संबंध सुदृढ़ हो गए हैं। सिंगापुर भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में शामिल है। राष्ट्रपति थर्मन आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति थर्मन कल से इस महीने की 18 तारीख तक ओडिशा की यात्रा पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इससे यात्रियों को विश्वसनीयता, प्रवासन सुविधाएं उपलब्ध होंगी और अंतर्राष्ट्रीय रास्ता निर्बाध और सुचारू बनेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार आवेदकों को FTI TTP HMA.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यह व्यवस्था देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी। इसराइल और हमास ने गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते पर सहमति व्यक्त की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बैठकों के बाद दोनों पक्ष समझौते पर राजी हुए हैं। यह समझौता रविवार को शुरू होगा और 42 दिन चलेगा। कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने कहा है कि इससे इसराइली बंदियों की रिहाई सुनिश्चित होगी और गाजा के लिए मानवीय सहायता बढ़ेगी। भारत ने गाजा संघर्ष विराम के समझौते की घोषणा का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह समझौता गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता की सुरक्षित और सतत आपूर्ति को बढ़ावा देगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने सभी बंधकों को रिहाई, संघर्ष विराम और संवाद के मार्ग का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज ईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर CRPF के दो जवान घायल हो गए। ये घटना बासागुड़ा इलाके में उस समय हुई जब सुरक्षा बलों का एक संयुक्त टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन पर थी। घायल जवानों को वहां से निकाला गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सुधार गृह जाते समय दो पुलिस कर्मियों के कथित तौर पर जांच से गुजर रहे एक आरोपी ने घायल कर दिया। सज्जाद आमल नामक आरोपी ने पुलिस से उनका हथियार छीनकर उन पर गोली चला दी। अपराध स्थल बिहार सीमा के निकट होने के कारण पश्चिम बंगाल पुलिस ने बिहार पुलिस को भी अलर्ट जारी किया है। अभिनेता सैफ अली खान अब स्थिर है, तो वे अब खतरे से बाहर है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने पुष्टि की है कि उन्हें रात 2 बजे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण भर्ती कराया गया था। कल रात अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया। सर्जरी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ के रिसाव को रोक दिया गया है। उनके बाएं हाथ और गर्दन की 2 अन्य चोटों पर भी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और 10 जांच दल उनका पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए जोरदार काम कर रही है। न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को शपथ दिलाई। केंद्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर पटना उच्च न्यायालय की चीफ न्यायाधीश ने न्यायाधीश चंद्रन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी थी। पूर्व सेना और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने आज दिन में 11 बजे आइजोल स्थित राजभवन के गोलाकार लॉन में मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने जनरल सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के उनके जोड़ीदार मिगुएल एंजेल दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने आज सुबह पुरुष डबल्स के पहले दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान की जोड़ी को हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।